नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन है। सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया। इसमें ओसीआई कार्ड धारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित संशोधन प्रावधान शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतगणना केंद्रों में गड़बड़ी के ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार बताया। इस वर्ष अप्रैल में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रूपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। अमेरिका ने भारत को लगभग 14 मिलियन डॉलर मूल्य की चोरी की गई 657 कलाकृतियां लौटाई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। अब समाचार विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज लेह के जेवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 75 वर्ष के बाद ये पवित्र अवशेष लद्दाख में वापस आए हैं।
यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को देश के भीतर किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है।
मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से दिव्य अनुभूति का एहसास करेंगे। आज यहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने का कार्यक्रम हो रहा है। आज ये एक प्रकार से धार्मिक आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक मिलन भी है।
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, भिक्षुओं, इतिहासकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और आम लोगों को एक मंच पर ला रही है। उद्घाटन समारोह बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव के साथ हुआ। ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरवा स्तूप में हुई खुदाई से प्राप्त हुए थे। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को संस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। प्रदर्शनी के साथ साथ कई सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षत वैद्यान।
इन पवित्र अवशेषों को उनके स्थायी जगह से पहली बार बाहर लाया गया है। पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण हुआ था। आज ही के दिन उन्हें बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत ओसीआई कार्ड पंजीकरण अब पूरी तरह डिजिटल होगा। नए नियमों में ई ओसीआई, बायोमेट्रिक आधारित फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर पाबंदी जैसे प्रावधान शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 2009 में संशोधन किए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी नाबालिग बच्चा भारतीय पासपोर्ट के साथ साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता है। अधिसूचना के अनुसार ओसीआई कार्ड पंजीकरण के सभी आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे। ओसीआई छोड़ने की घोषणा करने पर व्यक्ति को अपना मूल कार्ड निकटतम भारतीय मिशन, पोस्ट या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा। सरकार द्वारा ओसीआई दर्जा रद्द किए जाने की स्थिति में भी कार्ड लौटाना जरूरी होगा। नए नियम के अनुसार ओसीआई आवेदकों को अब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक नए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें उन्हें पंजीकरण के दौरान अपनी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए सहमति देनी होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मतगणना केंद्रों पर धांधली के आरोपों को निराधार बताया है। आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित माध्यमों से किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव के बाद होने वाले हिंसा से निपटने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। श्री अग्रवाल ने बताया कि कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं और इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य की 294 विधानसभा क्षेत्रों के 77 मतगणना केंद्रों पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए लगभग 1,850 केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम का दौरा किया और आरोप लगाया कि मतदान और मतगणना के बीच 4 दिन का अंतराल जानबूझकर मतदान मशीनों में छेड़छाड़ के लिए रखा गया है। उन्होंने आयोग से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य भर के सभी स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया था। राज्य में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना सोमवार को केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के साथ होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रेनिकी भूया शर्मा के खिलाफ कथित झूठे बयानों से संबंधित जालसाजी और मानहानि मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। आज एक आदेश में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने श्री खेड़ा को कुछ शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दी। अदालत ने कल इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मुंबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनसे 1,745 करोड़ रूपये मूल्य की 349 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम को बधाई भी दी। इस वर्ष अप्रैल में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का कुल संग्रह अब तक के उच्च स्तर पर दर्ज किया गया। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.7% अधिक है। कुल जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने ये 2,23,000 करोड़ रूपये से अधिक था। पिछले वर्ष अप्रैल माह में केंद्रीय जीएसटी का कुल संग्रह 52,000 करोड़ रूपये से अधिक और राज्य जीएसटी 61,300 करोड़ रूपये से अधिक रहा। कुल एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी संग्रह 1,29,232 करोड़ रूपये है। एलपीजी के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में नई कीमत 3,071.50 रूपये होगी। संशोधित कीमत आज से प्रभावी होगी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बढ़ोतरी तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए जाने वाले नियमित मासिक मूल्य अपडेट का हिस्सा है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश की कुल खपत में आम जनता की हिस्सेदारी लगभग 90% है। कंपनी ने कहा कि 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए 14 किलोग्राम से अधिक के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी ने बताया कि निर्धारित उड़ानों में लगी घरेलू एयरलाइनों के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन और केरोसिन की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बयान के अनुसार कीमतों में संशोधन चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित है जिनकी कुल खपत में अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी है और इनमें प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर नियमित मासिक समायोजन किया जाता है। कंपनी के अनुसार 80% उत्पादों की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव पलटने से हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नाव पलटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। यह हादसा कल शाम खमारिया द्वीप के पास बरगी नदी में हुआ, जब 39 यात्रियों को ले जा रही एक नाव अचानक आए भयंकर तूफान और तेज लहरों की चपेट में आकर डूब गई। 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 4 पर्यटक लापता हैं। महाराष्ट्र और गुजरात आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मुंबई के लोकभवन में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत की प्रस्तुति के बीच तिरंगा फहराया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज हुतात्मा स्मारक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को भारत का पावर हाउस और विकास का इंजन बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र दिवस को केवल उत्सव का ही नहीं बल्कि आत्म परीक्षण का भी अवसर बताया। उप मुख्यमंत्री और ठाणे के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के साकेत पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि उप मुख्यमंत्री सुनीता पवार जो बीड जिले की पालक मंत्री है उन्होंने वहां आयोजित कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। 67वें महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
गुजरात में स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज शाम सूरत में होगा, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में एक परेड होगी। एक रिपोर्ट।
राज्य स्तरीय समारोह के अंतर्गत आयोजित होने वाली परेड में पुलिस प्लाटून, विभिन्न विभागों की झांकियां और बाइक स्टंट शामिल होंगे। इसके बाद डुमस सी फ्रंट पर राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। राज्य के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरकार पर निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 2035 तक गुजरात को विश्व स्तरीय मॉडल राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की सफलता का श्रेय उद्योग और परंपरा के एकीकरण को भी दिया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने भारत को लगभग 14 मिलियन डॉलर मूल्य की चोरी की गई 657 कलाकृतियां लौटा दी हैं। मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने इसकी घोषणा की। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास की महावाणिज्य दूत राजलक्ष्मी कदम की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में इन कलाकृतियों को लौटाया गया। तस्करी नेटवर्क की कई जांचों के बाद ये कलाकृतियां बरामद की गईं। एक रिपोर्ट।
श्री एल्विन ब्रैग ने कहा कि भारत में तस्करी नेटवर्क सांस्कृतिक विरासत को बड़े पैमाने पर निशाना बनाते हैं। 600 से अधिक कलाकृतियों की वापसी से ये बात स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा कि चोरी की गई कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए अभी और काम करना बाकी है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत विनय प्रधान ने मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय, अमरीका के गृह सुरक्षा विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निरंतर सहयोग की सराहना की। लौटाई गई वस्तुओं में 2 मिलियन डॉलर की कांस्य प्रतिमा अवलोकितेश्वर और वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के एक मंदिर से चुराई गई नृत्य करते भगवान गणेश की बलुआ पत्थर की प्रतिमा भी शामिल है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
आज श्रम दिवस है। विश्व भर के श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन विश्व भर में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति में श्रमिकों के बलिदान का स्मरण किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर देशवासियों, देश भर के श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में 4th स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 7वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में दूरदराज के स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिन में असम और मेघालय में तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन है। सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया। इसमें ओसीआई कार्ड धारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित संशोधन प्रावधान शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतगणना केंद्रों में गड़बड़ी के ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार बताया। इस वर्ष अप्रैल में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। अमेरिका ने भारत को लगभग 14 मिलियन डॉलर मूल्य की चोरी की गई 657 कलाकृतियां लौटाईं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।